हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जल्दी से काम खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ने गहरी नजरों से रोहित को देखा और कहा, चलो मेरे साथ, वक्त आ चुका है तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देने का। सिद्धार्थ ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से ये कहा था। वही रोहित सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानता था कि वो सिद्धार्थ के साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकता। अगर सिद्धार्थ ने कहा है तो उसे जाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो सिर झुकाकर सिद्धार्थ के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। फिलहाल सिद्धार्थ ने देखा कि वो पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और उसकी ओर देखकर बोला, तुम जानते हो रोहित, मेरे दिमाग का कहना है कि मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। दिल तो मेरे पास है ही नहीं, और मैं अपने दिमाग की ही हमेशा सुनता हूँ। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे मना करने के बावजूद भी दादी ने शादी का रिसेप्शन अरेंज किया है, वो भी कल रात का। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। याद रखना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसका अंजाम क्या होगा। सारी चीजें, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना होगा। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? सिद्धार्थ की बातें सुनकर रोहित का सिर चक्कर खाने लगा। वो सोचने लगा कि जब सिद्धार्थ खुद इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता, तो फिर इस शादी के रिसेप्शन का क्या मतलब है? और दादी को आखिर हो क्या गया है? क्यों वो इस रिश्ते को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, जबकि इस रिश्ते में दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है? कहीं ना कहीं इस वक्त रोहित पूरी तरह से उलझ चुका था। फिलहाल अब इतना जरूर था कि बॉस ने उसे जीने का एक मौका तो दिया था। इस सोच के साथ उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर इस बार सिद्धार्थ खुराना की शादी की पार्टी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी गर्दन पक्की जाएगी। इसीलिए उसने खुद दादी के पास जाकर सारी डिटेल्स लेने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर रणविजय इस वक्त अपने कमरे में गुस्से से भरा बैठा हुआ था। वो झलक और अनामिका के साथ से थोड़ी देर पहले ही वहां से निकलकर घर आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा था। सिद्धार्थ का झलक के साथ होना उसके दिल और दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसे अजीब सा एहसास होने लगा था। उसका दिल तो कर रहा था कि इस वक्त जाकर सिद्धार्थ की जान ही ले ले। फिलहाल वो बेसब्री से सिर्फ एक ऐसे मौके की तलाश में था जब वो सिद्धार्थ और झलक को पूरी दुनिया की नजरों में अलग कर दे। लेकिन जब से उसे ये पता चला था कि दादी एक बार फिर कोशिश कर रही हैं सिद्धार्थ और झलक को साथ रखने की, तब से उसका खून पूरी तरह खौलने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि सबसे पहले दादी का ही अंत कर दे, लेकिन दादी का उसकी जिंदगी पर जो एहसान था वही उसे ये कदम उठाने से रोक रहा था। फिलहाल उसने जल्दी जल्दी मोबाइल उठाया और किसी को एक फोन मिला दिया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अनामिका ने रणविजय का फोन आते देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। वो सोचने लगी कि आखिर इस वक्त रणविजय को उससे क्या काम हो सकता है, क्या उससे मिलना ठीक रहेगा। फिलहाल अनामिका ने उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और सोच में डूब गई। वहीं रणविजय का पारा चढ़ चुका था। उसे साफ लग रहा था कि अनामिका जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। गुस्से में वो सीधा अनामिका के गेस्ट रूम में पहुंच गया जहां वो ठहरी हुई थी। उस वक्त अनामिका उदासी से खिड़की के बाहर खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। जैसे ही रणविजय उसके करीब आया और उसके पीछे खड़े होकर गुस्से से दहाड़ा, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल इग्नोर करने की? अनामिका पलटकर उसे देखते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? रणविजय, तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो गलतफहमी हो सकती है। शट अप, रणविजय चिल्लाया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम भूल गई हो कि तुम कितने कितने दिनों तक मेरे घर में ही सोया करती थी, और अब तुम मुझे ये ज्ञान दे रही हो कि कोई देख लेगा तो क्या होगा? जस्ट शट अप, जस्ट स्टूपिड, टिपिकल बातें। अब अनामिका नफरत से उसकी ओर देखते हुए बोली, कब बदलोगे तुम? कब इस नफरत को खत्म करोगे? क्या जरूरत है तुम्हें सिद्धार्थ को नीचे दिखाने के लिए? मैं चाहती हूँ कि तुम सिद्धार्थ के प्रति अपनी नफरत को भूलकर अपने आप पर एहसान करो। देखो खुद को बदले की आग में तुम कैसे जलते जा रहे हो। अब अनामिका ने जैसे ही ये कहा, रणविजय ने उसके बाल कसकर पकड़ लिए और उसका चेहरा अपनी ओर ऊपर कर दिया। रणविजय की आंखों में गुस्सा और गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, अपने फालतू की बकवास बंद करो। याद रखना, जिस मकसद के लिए तुम जी रही हो तुम्हारे जीने का मकसद है, उसका रास्ता सिर्फ मेरे होकर गुजरता है। और हाँ, अगर तुम आज रात मेरा काम कर दो तो कल की कल मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति का नाम दूंगा जो तुम्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ये सुनकर अनामिका की आंखें आश्चर्य से खुल गई। वो बोली, रणविजय प्लीज पहले साफ साफ बताइए, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो और मुझे क्या करना होगा?
मुझे ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझे आज करवाना चाहते हो? रणविजय ने गहरी नजरों से अनामिका को देखा। अचानक अनामिका के दिमाग में बिजली सी गिर गई। वो चिल्लाई, शट अप, ऐसा सोच भी सकते हो? तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारे लिए आज तक सब कुछ किया और बदले में तुम मुझे ये सब करवाना चाहते हो? रणविजय ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि उसके साथ सो जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि तुम उसके साथ सोने का एक्टिंग करो, क्योंकि जो एफर्ट दादी कर रही हैं वो पूरा फ्लॉप हो जाएगा अगर ये काम नहीं हुआ। क्या तुमने देखा नहीं कि सिद्धार्थ के लिए जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, बस एक बार फिर से VIP लोगों का मेला लगने वाला है और मैं नहीं चाहता कि कोई बात वहां तक पहुंचे। अगर ये मामला पूरे समाज के सामने आ गया और सिद्धार्थ की शादी पर किसी तरह का ठप्पा लग गया और ऊपर से दादी ने ओबेरॉय को भी कन्विंस कर लिया, तो पूरे समाज में ये ठप्पा लगते ही सिद्धार्थ और झलक की शादी को कोई अलग नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ कभी झलक को नहीं छोड़ेगा। मेरे पास सिर्फ आज का रास्ता है। अगर तुम आज वही काम कर दो जो मैंने कहा, तो मैं वादा करता हूँ कि कल के कल तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। रणविजय की बातें सुनकर अनामिका का दिमाग पूरी तरह भौंचक्का रह गया। वहीं रणविजय कुछ टाइम लिमिट लेकर वहां से बाहर निकल गया ताकि वो उसके जवाब का इंतजार कर सके। वहीं झलक खामोशी से एक तरफ बैठी थी। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। वो जानती थी कि शायद सिद्धार्थ खुराना आए ना आए, क्योंकि ज्यादातर समय सिद्धार्थ खुराना अपने अपार्टमेंट में ही रहता था, लेकिन जब से रणविजय खुराना वहां आया था, सिद्धार्थ खुराना भी खुराना मेंशन में ही रहने लगा था। उसका इरादा अब वहां से कहीं जाने का नहीं था। उसका सिर्फ एक ही काम था, झलक को सबसे ज्यादा नीचे दिखाना या रणविजय से दूरी बनाए रखना। अब झलक को यह भी समझ में आ चुका था कि सिद्धार्थ उसे रणविजय से दूरी बनाने के लिए क्यों कहता था। फिलहाल झलक के दिल में रणविजय के लिए या फिर सिद्धार्थ के लिए, दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं हमदर्दी थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी ताकत और घमंड के नशे में झलक के साथ कितना गलत किया था, ये बात वो कभी नहीं भूल सकती थी। सिद्धार्थ ने तो पूरी हद कर दी थी, और ऊपर से रणविजय जी ने जिस तरीके से उसकी जान लेने की कोशिश की थी, अगर उस वक्त उसका लक नहीं होता और किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया होता, तो शायद वो बच ही नहीं पाती।
और ऊपर से अभी भी रणविजय बाज नहीं आ रहा था, उल्टे नई नई साजिशें तैयार कर रहा था और चाहता था कि झलक उसकी जिंदगी में लौट आए। भला ऐसा कैसे हो सकता था? इस वक्त झलक बहुत कुछ सोच रही थी।